नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय परियोजना और पटना सासाराम गलियारे को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर आज पटना आ रहे हैं। कल बापू सभागार में सहकारिता सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर और ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की कमी की। और प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत परिवारों को चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण 30 अप्रैल तक रहेगा जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कोसी मेची अंतर्राज्यीय परियोजना और चार लेन के पटना सासाराम गलियारे को मंजूरी देने के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से बड़े कृषि क्षेत्र को पानी और सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा और इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। श्री मोदी ने कहा कि फोरलेन पटना आरा सासाराम गलियारा बिहार की जनता के लिए बड़ी खुशी की खबर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यातायात सुगम होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल बिहार की कोसी मेची नदी अंतर राज्य लिंक परियोजना को मंजूरी दी। इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में खरीफ सीजन में 2,10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने 6,282 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को 3,652 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है।
कोसी रिवर इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द एंटायर स्टेट और कोसी नदी के पानी को मेची रिवर के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 6,282 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ है। कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उससे कंप्लीट नया इरिगेशन होगा। साथ ही साथ ये कोसी रिवर है और इधर है मेची रिवर, मेची नीचे फिर महानंदा, तो कोसी से मेची को जोड़ने से फ्लड का जो एक्स्ट्रा वाटर है दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू रिवर्स। सो दिस इज अ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट प्लस इरिगेशन बेनिफिट।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार में 120 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाले चार लेन के ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड पटना आरा सासाराम गलियारे के निर्माण को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को 3,712 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि यह परियोजना 48 लाख दिन के रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
वन ऑफ दोज रेयर प्रोजेक्ट्स जो बहुत सारे हाईवेज और बहुत सारे हाईवे सिस्टम्स को जोड़ता है, ये प्रोजेक्ट है पटना से आरा होते हुए सासाराम को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट। 5 नेशनल हाईवेज और 4 स्टेट हाईवेज को ये जोड़ता है। दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कंजेशन और जो बिहार के कम्प्लीट इस एरिया में मूवमेंट पटना से लेके सासाराम तक कम्प्लीट मूवमेंट, इसका लोगों का बहुत इसमें बेनिफिट रहेगा।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोसी मेची लिंक परियोजना और पटना आरा सासाराम कॉरिडोर की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। श्री चौधरी ने कहा कि कोसी मेची लिंक परियोजना से राज्य के किसानों को काफी लाभ होगा। वहीं पटना आरा सासाराम कॉरिडोर बन जाने से राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने बिहार समेत 5 राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 6,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने बिहार के लिए 340 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की। केंद्र सरकार ने बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन की डीपीआर बनाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेल लाइन की लंबाई 120 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण पर 440 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर आज पटना आ रहे हैं। इस दौरान वे पटना में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और गोपालगंज के नए पुलिस लाइन मैदान में कल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री पटना पहुंचने के तुरंत बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक करेंगे।
सभागार में बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक 9:30 रात्रि तक चलेगी। उसके बाद जो बिहार के प्रमुख नेता हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, जो हमारी कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी की बैठक रात्रि में करीब 10:30 से 11:00 रात तक चलेगी।
इधर सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह कल पटना के बापू सभागार में सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दरभंगा में नवनिर्मित मखाना प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह सहकारी बैंकों के माइक्रो एटीएम का वितरण करेंगे। इसके अलावा वे राज्य के 2 पैक्स में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर और ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। साथ ही अन्य किसी भी प्रकार की बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि विनियामक आयोग के फैसले के अध्ययन के बाद उपभोक्ताओं को अनुदान देने पर फैसला किया जाएगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत परिवारों को चिन्हित करने के लिए चल रहा सर्वेक्षण अब 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पहले सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा का परिणाम जारी करेगी। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार दोपहर 12:00 परिणाम जारी करेंगे। परिणाम matricresult2025.com और matricbiharboard.com पर देखा जा सकता है। इस बार मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में 15,85,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज विभिन्न महाविद्यालयों में बनाए गए 40 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान दोपहर 2:00 तक चलेगा। केंद्रीय पैनल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 37 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 19,000 से अधिक मतदाता करेंगे। भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद APPP और कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI समेत कई छात्र संगठन चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के बाद शाम 5:00 से कला और शिल्प महाविद्यालय में मतों की गिनती की जाएगी। परिणाम देर रात तक आने की संभावना है। श्रम संसाधन विभाग ने 1 अप्रैल से प्रदेश के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 12 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 424 रुपए, अर्ध कुशल श्रमिक को 440 रुपए, कुशल श्रमिक को 536 रुपए और अति कुशल श्रमिक को 654 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता तारणी दास का संविदा नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। ये कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद की गई है। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली मई से ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम से निकासी पर बैंकों को 2 रूपये की वृद्धि करने की अनुमति दी है। रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा कि मुफ्त लेन देन की तय सीमा पार करने के बाद ग्राहक से प्रति लेन देन अधिकतम 23 रूपये का शुल्क लिया जा सकता है। नई व्यवस्था 1 मई से लागू होगी। अररिया सुपौल नई रेल लाइन के अंतर्गत सुपौल पिपरा रेलखंड पर कल स्पीड ट्रायल किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज संरक्षा आयुक्त रेल लाइन का निरीक्षण करेंगे। रेलवे ने स्थानीय लोगों से निरीक्षण के दौरान रेलवे लाइन से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि दक्षिण पश्चिम हिस्सों में गर्म हवा चलने की संभावना है।
अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कुछ जिलों के अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है। बिहार राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिले में गर्म मौसम बना रह सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवा चल सकती है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 39.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, बिहार विद्युत विनियामक आयोग का फैसला, ग्रामीण स्मार्ट मीटर की बिजली दरें घटी। दैनिक जागरण ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, पटना आरा सासाराम फोरलेन व कोसी मेची नदी जोड़ों को स्वीकृति। प्रभात खबर की सुर्खी है, चीफ इंजीनियर सहित 7 अफसर के ठिकानों से 11.64 करोड़ रुपए मिले। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 70वीं पीपीएससी अभ्यर्थियों को झटका, पटना हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली सभी याचिका खारिज की। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अग्निशमन सेवाओं के लिए बिहार को 340.9 करोड़ रुपए मिले। आज अखबार की सुर्खी है, म्यांमार में भूकंप का कहर, 150 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय परियोजना और पटना सासाराम कल्याणे को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आज पटना आ रहे हैं। कल बापू सभागार में सहकारिता सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर और ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की कमी की। और प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत परिवारों को चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण 30 अप्रैल तक रहेगा जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन 2:03 बजकर 10 मिनट पर प्रसारित किया जाएगा।